તારીખ 23/9/1991 શ્રી સમયસાર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 126 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 45
વેદન મે આતા ઇસલિયે કહીં પ્રસન્નતા ભી નહીં રહેતી ઓર ઇસલિયે કોઈ દૂસરા ભાવ હૈ એસા ભી વેદન મે નહીં આતા मैं ही अपने को वेदन में आता हूँ ऐसा स्पष्टतया मालूम पड़ता है अगर अंतरंग में सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से देखे तो। और बार बार ऐसा वेद ज्ञान करने का प्रयास होता है, प्रयोग होता है, तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष ऐसा शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रकट होता है, शुद्धोपयोग हो जाता है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव में शुद्धोपयोग प्रकट हो जाता है। इसका भावार्थ हमें थोड़ा स्पष्ट करते हैं, पंडित जी स्वयं स्पष्ट करते हैं जब कि शुद्ध ज्ञान मात्र तथा रागादि अशुद्धपना दोनों का विशेषण ही अलग है। ज्ञान मात्र है वो अकेला शुद्ध ज्ञान मात्र है तथा रागादि भाव में मलिनता है, अशुद्धपना है। ये दोनों भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करने के लिए अति सूक्ष्म है। दोनों का भिन्न भिन्न अनुभव करना ये सूक्ष्म तो अवश्य है, स्थूल नहीं है, क्योंकि जो वेद ज्ञान के प्रयोग में प्रवेश करते हैं उनको ये बात थोड़ी कठिन लगती है। शुरू में इतनी प्रैक्टिस नहीं होने से थोड़ा कठिन भी लगता है, या किसी को ज्यादा कठिन भी लगता है, और ऐसा लगता है कि तो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि अभी तक विचार की जो पद्धति है उसमें तो काफी स्थूलता है। और ऐसे अंतरंग में वेदन से राग का भिन्नपना अनुभव में लेना ये बात अधिक सूक्ष्म लगती है। तो पंडित जी कहते हैं कि ये भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करने के लिए अति सूक्ष्म है, ये बात सही है कि वो सूक्ष्म तो है ही, क्योंकि रागादि अशुद्धपना चेतन सा दिखता है। दोनों भाव में क्या है कि राग भी जीव के परिणाम अंश होने से चेतन जैसा वो दिखता है, चेतन नहीं है लेकिन चेतन जैसा दिखता है, चेतन सा दिखता है। इसलिए अति सूक्ष्म दृष्टि से अंतरंग में अति सूक्ष्म दृष्टि से और अति सूक्ष्म दृष्टि में भी अनुभव क्या चीज है उसके लिए अति सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जो जुदा है वो जुदा मालूम पड़ता है, क्योंकि है भी जुदा। कभी राग ज्ञान रूप हुआ नहीं और ज्ञान वेदन रूप राग कभी हुआ नहीं, और ज्ञान कभी राग रूप हुआ नहीं। दोनों तो अपने अपने में हमेशा रहा है, अज्ञान अवस्था में भी एक अनुभव में गलती किया है कि भिन्न ज्ञान का अनुभव नहीं किया, ज्ञान ने राग को अपने रूप में अनुभव कर लिया, इतनी गलती हुई है, और वो भी उतनी लंबे काल तक हुई है, मैंने अनंत काल तक हुई है प्रत्येक जीव को, कि उसको भिन्न भिन्न करने में कठिनता लगती है। और ऐसा एकत्व अनुभव करने में ज्ञान में स्थूलता भी बहुत हो गई है। ज्ञान में परिणमन दो प्रकार का होता है, स्थूल और सूक्ष्म। तो ज्ञान स्थूल हो जाता है जड़ के साथ। जैसे कोई कहते हैं कि जो लोग गैया को भैंसा को चराते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, प्राणियों जैसी हो जाती है। सारे दिन सुबह से निकल जाते हो, मरवाड़ लोग जो हैं, मरवाड़ बोलते हैं गोवाल, तो सुबह से निकल जाते गाय भैंस को लेकर के और शाम को वापस आते, सारे दिन इनके साथ रहते हैं, बात भी इनकी भाषा में करते हैं इनके साथ, इनकी भाषा वो थोड़ी बहुत जानते हैं, पानी ऐसे पिलाना और खड़ा रखना हो तो ऐसे बोलना, उसको खड़ा रहे उसको चलाना हो तो ऐसे बोलना, अपने इनकी भाषा में बोलते हैं। तो इनकी बुद्धि कैसी हो जाती है, इतनी स्थूल हो जाती है कि उनको कुछ पता नहीं चलता, जो लौकिक में भी जो सूक्ष्मता है ना वो नहीं पता चलता। और बहुत मोटी बुद्धि वाले को ऐसे बोलते भी हैं कि ये भरवाड़ जैसा है, तो समझ में ही नहीं आता। ऐसा ज्ञान जैसा संग करता है, मतलब क्या है, सिद्धांत क्या है, ये तो दृष्टांत है कि ज्ञान जिसका संग करता है परिणमन भी उसका करीब करीब ऐसा होने लगता है। तो जीव ने राग का संग बहुत किया है और प्रीति से रुचि से संग किया है। राग का संग किया है उतना ही नहीं, लेकिन बहुत रुचि से और बहुत प्रीति से संग किया है। उसको राग की मिठास उतनी लगती है कि राग तो मानो संसारी जीव का एक प्राण हो गया हो। राग छुड़ाने में उसको, राग छोड़ने में बहुत उसको लगता है कि जैसे वेदना होवे, दर्द होवे, ऐसा लगता है। उपवास कर सकता है, अनाज को छोड़ सकता है और परिवार को छोड़कर मुनि दीक्षा ले सकता है। त्याग तो उतना कर दे रहे, लेकिन एक राग को छोड़ना ये कभी अनंत काल में नहीं किया। बाहर में त्याग बहुत किया, तो एक चीज छोड़ना हो तो छोड़ देंगे, हम नहीं कहेंगे, हम नहीं ग्रहण करेंगे, हम उसके बिना चला लेंगे, घर में नहीं रहेंगे, कुटुंब में नहीं रहेंगे, दुकान को छोड़ देंगे, धंधा को छोड़ देंगे, जंगल में चले जाएंगे, सब किया है, राग को नहीं छोड़ा। इतनी राग की पकड़ है, वो छोड़ना अति ही सूक्ष्म है। वो जानते हैं, ज्ञानी वो जानते हैं कि बात तो वास्तव में उनके लिए थोड़ी कठिन है। जिस परिस्थिति में जीव खड़ा है संसार में, उस परिस्थिति में उनको राग को छोड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी कोशिश करे तो छोड़ सकता है जी। हाँ, उनको सहज छूट जाता है। हाँ, उनको सहज मात्र में छूटा था। इसका कारण क्या है कि उसने वो पात्रता में थे, पात्रता में तो बहुत फौरन शीघ्र आ सकते हैं जी, तो उतनी पात्रता में तो उस समोसरण में मानसम के पास आते ही पात्रता में आ गए, ऐसे इनके परिणाम बदलने लगे। और फिर पुरुषार्थ भी इतना तेज हो गया उनका, जीव में ताकत भी बहुत है, ऐसा नहीं है वो नहीं कर सकता है, ताकत तो उतनी है कि एक दफे सर्वांश राग का अभाव कर डालेगा, पूर्ण वितराग हो जाएगा। लेकिन शुरू शुरू में प्राय करीब करीब बहुभाग जीव को ये कठिन लगता है, इसलिए उपदेश इस तरह से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को ऐसा लगे, ऐसा भी तेज पुरुषार्थ वाले जीव होते हैं जो बहुत कम समय में ज्यादा काम कर लेते हैं। सबको ज्यादा समय लगे ही, ऐसा कोई वस्तु स्थिति नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है। हाँ, उस पर उनको ममत बने रहना, क्या उनकी नजर में वो मेरा है ऐसा दिखाई नहीं देता, एक जीव है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये मेरा है ऐसा नहीं दिखाई देता। नहीं, एक तो नहीं होता, वो तो है ही, उसका बहुत बड़ा सबूत है हमारे पुराणों में कि दोनों सम्यक दृष्टि थे, भरत जी और बाहुबली जी, अपनी स्थापना है ना ऊपर, अभी दोनों के आत्मा सिद्धालय में विराजमान है। ये प्रतिमा तो अरहंत की है और बाहुबली जी के है वो मुनिपना की है, क्योंकि उसको वो बेल है ना वो मिटी हुई है, अरहंत अवस्था में ऐसा कोई दिखाव नहीं होता, सभी अरहंत का एक सा दिखाव होता है, उसका चेहरा मोरा किस स्पेशल टाइप का नहीं रहता, फिर जैसे प्रतिमा का एक एक ही चेहरा है जिसमें न बचपन दिखे न बुढ़ापा दिखे न युवा अवस्था दिखे, क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये युवान है, ये भी नहीं कह सकते कि ये वृद्ध है और बालक है, एक सा शरीर हो जाता है सभी अरहंतों का, जैसे अपने प्रतिमा बनवाते हैं, और ये बेल वगैरह जो है वो तो मुनि अवस्था में होते हैं, ये स्थापना मुनि अवस्था की है। दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे, राग की पकड़ दोनों को नहीं थी, चरम शरीर थे, उसी भाव में निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया है दोनों ने, तो फिर भी आपस में लड़े, लेकिन वो प्रासंगिक बात थी। किस प्रसंग की बात थी? कि बाहुबली जी ने ये सोचा कि पिताजी राजपाट छोड़ करके जब गए तब हमको पिताजी की ओर से कितना राज हमें मिला है, जब मैंने मुझको पिताजी ने दिया, अब मेरा राज कौन ले सकता है, कोई भी है इतना, कोई मेरे से तो कोई समर्थ संसार में दिखता नहीं। वो बात भी ऐसी ही थी, भले ही भरत जी चक्रवर्ती थे लेकिन ताकत उनकी बाहुबली से ज्यादा नहीं थी, वो हारते थे लड़ाई में, वो हारते थे, तो दो दफे हार गए तो उनको भी गुस्सा आ गया कि मैं तो चक्रवर्ती हूँ, चक्रवर्ती के अंडर में सब को आना ही चाहिए, भले वो राजा है लेकिन चक्रवर्ती बना तो उसको स्वीकार करना चाहिए, ऐसा पुण्य है हमारा, तो क्यों नहीं स्वीकार करते है? अगर कोई स्वीकार नहीं करेगा तो ये चक्र है, इसे काम देना पड़ता है उसको, तो चक्र को छोड़ दिया, और चक्र को छोड़ते हैं तो इसका सामना तो कोई कर नहीं सकते, वो तो दैवी शस्त्र है, लेकिन इनका भी एक सिद्धांत है कि वो अपने गोत्र को वाले को सामने को छेद नहीं करता, सिर छेद नहीं करता, वापिस आया तो और गुस्सा बढ़ गया बाहुबली जी को, अच्छा चक्र छोड़ा, मेरे पर चक्र छोड़ दिया, तो फिर उन्होंने अपनी ताकत जो थी वो उतनी थी कि किसी को एक भी मुष्टि एक प्रहार करे सामने वाला जिंदा रहे वो असंभव है, बन नहीं सके, उतनी ताकत थी, भी उठाया, उठाते ही भीतर में भिन्नता थी नहीं, अभी पॉइंट आता है इसका कि इतने हद तक तो प्रवृत्ति हुई राग के साथ लेकिन एकत्व पूर्वक नहीं हुई, उस प्रकार के राग से या द्वेष से वो विरक्त थे और जागृत थे, तो उस वक्त जागृति का पुरुषार्थ बढ़ गया, हीन पुरुषार्थ था तो लड़ाई तक प्रवृत्ति होगी, पुरुषार्थ तेज हुआ तो यही हाथ से केस नोट कर लिया, कितनी ताकत। राज का सब छोड़ देने का एक सेकंड में लग गया, विचार नहीं किया कभी कब छोड़ना है, आज छोड़े कल छोड़े, नहीं अब अभी ही छोड़ दिया। इतना भाव कहां से आया, इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो ये पता चलता है कि भीतर में वो अलग ही थे, भिन्न ही थे। थोड़ा खिंचाव हुआ, इसके सामने पुरुषार्थ खड़ा तेज हो गया, छोड़ दिया, बस उसी वक्त वो जंगल में चले गए। और भरत चक्रवर्ती 6 खंड में राज करने लगे, उसको राज छोड़ने में कितना समय लगा? कुछ नहीं लगा। जितना भी उनका उस प्रकार का कर्म का साथ रहने का था तो रहे, लेकिन भिन्न होकर रहे, अंतरंग वैराग्य में रहे। और जब भी वैराग्य तेज हुआ, एक अंगूठी गिर गई, वो तो चक्रवर्ती होते बहुत उनको तो पहनने का होता है, गले में, आंख में, इधर उधर सब जगह, कान में, एक अंगूठी गिर गई और विचार चल गया उस पर ज्यादा। उसी वक्त चक्रवर्ती पना तो छोड़ा, लेकिन उसी वक्त मुनिपणा में अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। क्या बात है, बाहुबली जी ने मुनिपणा अंगीकार करके 1000 वर्ष खड़े खड़े रहे, वो 1000 वर्ष तक वो मुनिपद में खड़े रह गए ध्यानस्थ अवस्था में, बाद में केवल ज्ञान हुआ। और उन्होंने इतना राज काज भोग उपभोग में रहे, लेकिन भिन्न रहे। संयोग दृष्टि से देखे तो राज काज में भोग उपभोग में रहे, सूक्ष्म अंतरंग दृष्टि से देखे तो वो भिन्न रहे। तो केवल ज्ञान लेने में अंतर्मूर्ति लगा, ज्यादा देर नहीं लगी, वो 6ठे गुणस्थान में आए ही नहीं, 5ठे गुणस्थान में थे। दीक्षा अंगीकार कर लिया, ध्यान में अपने स्वरूप ध्यान में बैठ गए, 7ठे गुणस्थान में आए। पहले मुनिराज 7ठे गुणस्थान में आते हैं, फिर विकल्प से च्युत होते हैं तो पंच महाव्रत आदि के 6ठे गुणस्थान में आते हैं, तो आए नहीं 6ठे गुणस्थान में। बहुत किया था, बहुत मैंने किया। तो जैसे वो लड़ने को जाते थे तो शाम को लड़ाई खत्म होती थी, वहां इतना डिसिप्लिन था आपस में कि सूर्यास्त के बाद कोई किसी पे हमला नहीं करे रात को, कितनी प्रामाणिकता में आपस की छावनी में सवरे में। तो वो तो क्या करते कि शाम को युद्ध बंद करके ही वहां तो अपना महल बना लेते, मकान लेते, जहां भी वो उनकी लड़ाई चलती है वहां उनको तो देवी देव लोग हैं उनके साथ में सेवा में, तो बना देते हैं फॉरेन, उसको टाइम नहीं लगता कि 3 महीना 6 महीना तक ये स्लैब भरना वो भरना, वो वहां तक बात नहीं है, सीधा उनको महल बन जाता है। तो अपने कमरे में बैठे तो सीधा ही वो निर्विकल्प शुद्धोपयोग में आ जाते थे। सारे दिन तो लड़ाई में रहे मैदान में, और शाम को देखे तो शुद्ध उपयोग में ली, चैतन्य गोला देह से भिन्न हो जावे, विकल्प से भी भिन्न हो जावे। उतना वो जब लड़ाई करते थे या संसार में थे तो उतने पुरुषार्थ युक्त थे उस वक्त। तो फिर मुनिपणा आने के बाद उनको केवल ज्ञान लेने में देरी नहीं लगी, अंतर्मुहूर्त में घंटा भर में तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अरहंत दशा आ गई। हाँ सभी होती है, हाँ बंद हो जाता है, लेकिन वहां राग की चिकास नहीं है, राग से भिन्न है, द्वेष से भिन्न है, बंद क्रिया से नहीं होता है, परिणाम से होता है। परिणाम है बंद, क्रिया से बंद होए तो डॉक्टर को फांसी मिलनी चाहिए, ऑपरेशन करते कोई मर जावे, लेकिन इनका परिणाम खून करने का नहीं है, बचाने का है। तो क्रिया से तो कोई बंध नहीं होता, उनके परिणाम उतने मारने के लिए इतने तीव्र वर्ष वाले नहीं होते, तो अनुभाग भी बहुत कम बैठता है, स्थिति भी बहुत कम बैठती है द्रव्य कर्म की, बंधन की। और स्वरूप ध्यान में लगते हैं तो खिर जाते हैं, उदयाभावी क्षय उसको बोलते हैं, उदय का अभाव होकर के क्षय होते हैं, सत्ता में से सिद्ध गिरते हैं, ऐसी निर्जरा उदयाभावी क्षय ऐसी निर्जरा हो जाती है, तो उनको भोगना नहीं पड़ता। वैसे तो मुनिराज होते हैं चरम शरीर, छठे गुण स्थान में बहुत अहिंसा का तीव्र कड़ी क्रिया का पालन होता है, और शुभ बंध कितना होता है उनको, लेकिन उसमें चिकास नहीं है, तो स्थिति अनुभाग नहीं इतना पड़ता है द्रव्य कर्म में। तो फिर वो श्रेणी में बैठते हैं ध्यान में, सब कर्म खत्म, भोगना नहीं पड़ता है उसको। हाँ तो उसमें रस आ गया, स्वभाव तो लंबा नहीं था ऐसा, परिणाम लंबे नहीं थे, लेकिन परिणाम में लेशिया जो है वो बढ़ जाती है। आयुष बंध का काल था और स्वभाव था, ऐसा स्वभाव दूसरे के लिए दूसरों के लिए मुनि को आता नहीं, लेकिन आया तो 31 सागर पर चले गए वहां है। हाँ वो थोड़ा चिकास आ जाता है तो फिर स्थिति लंबी हो जाती है, आघाती की स्थिति लंबी पड़ जाती है। हाँ परिणाम का दोष, हाँ पर उनका आयुष भी पूरा होने वाला था, उसी वक्त बंद भी उसी वक्त होने वाला था। मुनि दशा में अगर पुरुषार्थ करे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति, पुरुषार्थ से च्युत हुए तो चतुर्थ गुण स्थान में देवलोक में चले जाए, ऐसा होता है। मतलब क्या है, तो जितना पुरुषार्थ तीव्र उतना काम जल्द होता है, शीघ्र होता है, जितना पुरुषार्थ मंद है उतनी देरी लगती है। अनंत पुरुषार्थ करने की ताकत भीतर में अपने शक्ति में भरी पड़ी है, ये गुण है, अनंत विद्या ऐसा गुण है। अब प्रयोग कितना हुए उस पर आधारित है, इसलिए यहां कहते हैं कि बहुभाग जीवों को ज्ञान और राग का भिन्न भिन्न रूप से अनुभव करने के लिए अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मता उसको लगती है कि बहुत सूक्ष्म है, समझने में कईयों को तो सूक्ष्म लगता है, परिणमन में तो और सूक्ष्म है, क्योंकि समझने में तो विचार चलता है और विकल्प है वो स्थूल ज्ञान है, और अनुभव ज्ञान है वो सूक्ष्म ज्ञान है। तो सूक्ष्म विषय स्थूल विचार में आता नहीं है जल्दी, तो कठिन लगता है, ये बात कैसी चलती है। जैसे ये वेदन का विषय है, तो वेदन तो सूक्ष्म है, और जो ज्ञाकार ज्ञान है विचार ज्ञान है वो स्थूल है, तो उसमें समझने में भी सूक्ष्म पड़ता है, इसलिए थोड़ा और ज्ञान सूक्ष्म होता है पुरुषार्थ से, और आत्मरुचि से ज्ञान की सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, और ज्ञान सूक्ष्म होता है तो स्वयं ही वेदन करने वाला है और स्वयं ही वेदन में आने वाला है, दोनों स्वयं ही है, इसलिए स्वयं के रूप में वो अनुभव में आता है। जब स्वयं के रूप में अनुभव में आता है तो उसको सुधोपयोग स्वानुभव ऐसा उसी कारण से होता है, यही भेद ज्ञान से ही सुधोपयोग होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तीन काल तीन लोक में स्वानुभव का दूसरा कोई उपाय नहीं है। राग से भिन्न ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान करे, अनुभव करे, यही एक मोक्ष का मार्ग है। अनुभूति सिवाय कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है तीन काल में। एक नहीं हो रहे, लेकिन प्रतिबिंब को प्रतिबिंब नहीं जान करके अपना स्वरूप जान लेता है, बिंब जान लेता है। जैसे मर्चा का स्वाद कैसा है, मिर्च का तीखा है बराबर, क्या तीखापन ज्ञान में प्रवेश पाता है? ज्ञान कभी तीखा हो जाता है? ये तो स्थूल दृष्टांत है। तो फिर अनुभव ऐसा क्यों होता है कि जिसे ज्ञान में तीखापन आया? जब तीखा रस है वो मिर्च, जो पुद्गल परमाणु है मिर्च का, उसमें ऐसा रस है, तीखापने का रस है। अब जीव को तो रस गुण है ही नहीं, पुद्गल को रस रूप गंध स्पर्श ये पुद्गल का गुण है नहीं? जीव का तो ऐसा गुण ही नहीं है, न गंध है न स्पर्श है न रस है। फिर ये तीखा रस मुझे लगा, मेरे में आया, ऐसा अनुभव क्यों करता है? ये भ्रांति है। ज्ञान कभी तीखा हो तो मुझे गर्म लगता है, मुझे ठंड लगता है। क्या ज्ञान गर्म होता है, क्या ज्ञान ठंडा होता है? ठंडी गर्मी शीत उष्ण को जानने का कार्य होता है, अनुभव करने का कार्य हो ही नहीं सकता ज्ञान। ऐसे रागादि जानने में आ सकता है, वेदन में आ सकता नहीं। वेदने वाला ज्ञान वेदन रूप सदा सर्वदा रहता ही है, वो तो अपना स्वरूप का त्याग कभी नहीं करता, न कर सकता भी है। ऐसा जब है तब हमें और जगह से हमारा लक्ष्य छोड़ करके, सभी और जगह से हमारे लक्ष्य को छोड़ करके हमारे ही ज्ञान में हम हमारा अनुभव क्या हो रहा है उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें, क्योंकि ये वेदन सूक्ष्म है, तिरोभूत है ना, इसलिए सूक्ष्म है। उनको अनुभव दृष्टि से देखे तो अनुभव में आता ही है, नहीं आवे ऐसा नहीं, थोड़ा कोशिश करना चाहिए। प्रयास करने वाला इस लाइन में हमेशा ही हमेशा सफल होता है। इस मार्ग की एक सुंदरता है कि इसमें प्रयास करने वाले को किसी एक को भी कभी निष्फलता नहीं मिलेगी। बाहर के कार्य में आप कितने भी प्रयास करो, व्यापार करो, पैसा मिले नहीं भी मिले, स्कूल में पढ़ो उत्तीर्ण हो नापास भी हो जाओ, बाहर के पुरुषार्थ में ये दो परिणाम दो प्रकार के आते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता है। जो अंतरंग में अपना स्वानुभव का पुरुषार्थ करता है, प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, उसको सफलता मिलेगी मिलेगी और मिलेगी ही, ये ज्ञानियों की गारंटी, क्योंकि वो अपने बस की बात है और अपना स्वभाव भी ऐसा ही है। क्या अपना स्वभाव ऐसा ही है तो स्वभाव के अनुकूल हम काम करते हैं तो क्यों स्वभाव स्वभाव रूप परिणमित नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो कोई सवाल ही नहीं है, नहीं होने का सवाल नहीं है। वो उसका प्रीस्टेज है, क्या अनुभव को देखने से क्या अनुभव है, ऐसा अनुभव का एहसास आएगा कि क्या अनुभव हो रहा है। तो सीधा नहीं पकड़ सके कि हमें अनुभव कैसे करना, हमें अनुभव कैसे करना, तो उनके लिए कहते हैं कि तुम अपने अनुभव को तलाश करो, जांच करो, देखो तो सही। जैसे कोई बात से हम अनजान हैं, जब हमें पता चलता है, कोई अपने को सही बात बता देता है कि बात तो ऐसी है, आपको ये बात में विश्वास रखना है कि बात तो ऐसी ही है, दिखाओ कुछ भी हो लेकिन मूल बात ऐसी है, तो आप क्या करेंगे? पहले चिकित्सा में आ जाएंगे, क्या करेंगे? ये भी एक ज्ञान का धर्म है, चिकित्सा करना वो ज्ञान का धर्म है। तो जब आप स्वयं के वेदन से अनभिज्ञ हो, नहीं जानते हो, तो आप इसकी चिकित्सा में तो जाइए। हाँ हाँ, देखना, तलाश करना, जांच करना, क्या होता है। हमको नहीं लगती है, लेकिन हमको तो लगती है। आप बोलते इससे क्या हो गया? हमारा अनुभव बोलता है कि अग्निस्पर्श से गर्मी लगती है हमको, दिखाव तो ऐसा ही है। जाने कहेंगे कि देखिए, अगर तुझे गर्मी लग गई और गर्मी आत्मा में भीतर में उतर गई, तो फिर वो गर्मी गर्मी रहने वाली है, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है। लेकिन 107 डिग्री का बुखार होवे तो भी आत्मा गर्म नहीं होता, आत्मा में गर्मी होने का धर्म ही नहीं है, ऐसी अवस्था ही नहीं हो सकती है। ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, तो भिन्न ज्ञान को देखे तो पता चल जाता है कि ठीक है, गर्मी अलग चीज है, गर्मी का ज्ञान है, ज्ञान का वेदन दूसरी चीज होती है। तो इस तरह सीधा ही अनुभव में नहीं बैठे कोई बात, तो अगर कहने वाले से कोई न्याय युक्ति आगम से अनुमान से तर्क से कोई बात में दम लगता है, तो विचार से तो बात सम्मत होती है कि अगर गर्मी ज्ञान में उतर गई तो आत्मा गर्म हो जाता, लेकिन आत्मा तो गर्म होता ही नहीं किसी का, क्योंकि उसमें गुण नहीं है ऐसा गर्म होने का, ठंडा होने का। तो बात तो कोई समझ में आ सकती है, लेकिन अनुभव ऐसा नहीं होता है। तो उसकी तलाश में, जांच में, चिकित्सा में ज्ञान को जाने का होता है। और जब उसकी गहराई में जाता है और वस्तु को अपने स्वभाव से देखने का होता है, तब सही पता चल जाता है। इसलिए ज्ञान गुण मात्र ऐसा लिया, स्वभाव से देखो तो ज्ञान स्वभाव हमेशा ज्ञान स्वभाव रूप ही रहा है, राग रूप भी नहीं हुआ, शरीर रूप भी नहीं हुआ, दूसरा कोई विषय रूप तो हुआ, वो बात ही रहती। बस उतना फर्क है कि अनुभव में नहीं आता है तो अनुभव को देखना है, क्या जैसे देखना है वो विशेष ज्ञान को ले गए अपन। थोड़ा और स्पष्ट कर दें इस विषय को कि हमने ये बात सोची कि एक ज्ञान की पर्याय में ज्ञाकार ज्ञान ज्ञान विशेष है, उसी ज्ञान की पर्याय में ज्ञान सामान्य है, ज्ञान वेदन रूप है। अब आपका विशेष अंग है, ज्ञान का विशेष अंग है, वो भिन्न भिन्न रागादि अनेक ज्ञेयों को जान रहा है। अब इनको उठाओ वहां से, घुमाओ वहां से और भीतर में देखो कि ये वेदन क्या चीज है। पर्याय तो दो है नहीं, देखने वाली पर्याय तो दो है ही नहीं, जो दिखने में आएगा वो अपने आप को दिखेगा। तो ये जो विशेष अंग है वो बहिर्मुख था, वो अंतर्मुख होकर के अंतरंग को देखता है, अपने अपना अंतरंग को वो देखता है, तो यहां से छूट जाता है। उसका रागादि ज्ञेय का संपर्क है वो छूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्शन नहीं रहता ज्ञेय के साथ इसका, बस बात खत्म हो गया, भेज गया है उसको करना नहीं है, वो तो है ही वहां। लेकिन हमारा विशेष ज्ञाकार ज्ञान ज्ञेय के प्रति सन्मुख था, ज्ञेय सन्मुख था, वो अपने आप में अपनी सन्मुख हुआ, स्वसन्मुख हुआ। तो स्वसन्मुख होते ही जो वेदन था उसका पता चल गया। जो जी हाँ, आत्मा ही ज्ञेय रूप हो गया। आत्मा तो लक्ष्य में है, और लक्ष्य में नहीं है तो उसी वक्त लक्ष्य में वेदन से आ जाता है। परिशिष्ट का ले लो, दो बात है, अनादि अज्ञानी है उसको लक्ष्य हो जाता है, यानी भाववासन हो जाता है, किससे? वेदन अंश से। और जिसको भाष्यमान हुआ, लक्ष्य में आ गया, अपना पूरा सामर्थ्य यानी पूरा आत्मा, उसको वेदन से अनुभव हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य तो है उनको, लक्ष्य वाले को अनुभव होता है। पहले भेद ज्ञान होता है उसमें लक्ष्य हो जाता है, और लक्ष्य के बाद जो भेद ज्ञान की प्रक्रिया बार बार, इसलिए करो तो बोला, बार बार जो भेद ज्ञान की प्रक्रिया होती है, इससे अनुभव हो जाता है। बस बस फिर अनुभव के बाद विकल्प में आ गया तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया चालू रहेगी, बार बार अनुभव आने लगेगा इसी कारण से, इसी वजह से। तो इसलिए कहे कि धारावाही बोधने न, दूसरा कलश वही है 127 का, कि अगर धारावाही लगातार, धारावाही मैंने क्या, अगर लगातार ऐसा बोध होवे, ऐसा भिन्न ज्ञान का अनुभव है, शुद्धात्मा की उपलब्धि हो जाती, उसको केवल ज्ञान और परिपूर्ण शुद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। तो विधि में कोई फर्क नहीं है, जिस विधि से भाव वासन हुआ, इसी विधि से अनुभव हुआ, इसी विधि से केवल ज्ञान हो जाता है, इसलिए केवल ज्ञान की प्रतीक शुरू में आ जाती है, यही कारण है। श्रीमद जी के वचनामृत है कि नहीं, के हमको केवल ज्ञान वर्तता है, क्या लिखा है, श्रद्धा अपेक्षा से कहे तो हमें केवल ज्ञान वर्तता है, मुख्य नहीं के हेतु से कहे तो हमें केवल ज्ञान वर्तता है, और इच्छा दशा से कहे तो भी हमें केवल ज्ञान वर्तता है। केवल ज्ञान होगा ऐसा नहीं लिखा है, भविष्य काल का प्रयोग वचन में नहीं है, वचन प्रयोग वर्तमान काल का है। क्यों? कि दिखता है केवल ज्ञान हो जाएगा ऐसा दिखता है, और एक नहीं से तो केवल ज्ञान, ज्ञान केवल ज्ञान रूप ही रहे वो केवल ज्ञान है, फिर 13वें गुण स्थान की बात तो लोगों को दिखाने की है, मूल में तो ये केवल ज्ञान है, ज्ञान केवल ज्ञान रूप रहे वही केवल ज्ञान है, तो ज्ञान मात्र कहो या केवल ज्ञान कहो एक ही बात है। हाँ, ये से भिन्न हो गया ना आधार बुद्धि, क्या आधार तो अपने आप का हो ही गया, और ये तो सिर्फ रह गया बहुत दूर, प्रतीति मैंने ज्ञान पूर्वक प्रतीति आई है। हाँ, ऐसी चर्चा चलती गुरुदेव के पश्चात, किसी कोई मुमुक्षु में ऐसी शंका उठाई कि अभी तो मति श्रुत ज्ञान है तो केवल एक भव के बाद मोक्ष हो जाएगा, वो अपने विषय में किस ज्ञान से कहा, ये ज्ञान कौन सा है, केवल ज्ञान तो नहीं हुआ अभी, और केवल ज्ञान तो एक भव के बाद होने वाला है ऐसा कह रहे हैं, तो अभी तो नहीं है, वो बात साफ हो गई। तो कैसे पता चला? गुरुदेव ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि ज्ञानी पुरुष को भी कभी अपने निर्मल श्रुत ज्ञान में ऐसा भाषण आता है, तो भाषण निर्मल श्रुत ज्ञान में आने से जैसे केवल ज्ञान में भाषण आवे उतना ही वो सही निकलता है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। और वो ज्ञानी पुरुष अपने लिए जब इस बात को प्रसिद्ध करता है तब उसको कितनी तसल्ली होगी भीतर में। हाँ, कि जैसे केवल ज्ञान में दिखता है वैसा ही दिखे। इतनी निर्मलता ज्ञान की भी है, और ज्ञान की इतनी निर्मलता हो तो श्रद्धा हुए बिना रह नहीं, आत्मविश्वास आए बिना रह नहीं। ऐसी बात है। हाँ सर, अच्छे मनुष्य वो निर्वाण चरम शरीर होंगे, ऐसी बात। हाँ, उसी भाव में वो चारित्र को अंगीकार करेंगे, देवलोक में तो चारित्र का परिणाम होते ही नहीं। अभी जो यहाँ के जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो दो चार सागर स्थिति वाले सनत कुमार महेंद्र में जाते हैं, जैसे गुरुदेव गए वहाँ, मिनिमम आयुष दो सागर का है, मैक्सिमम चार सागर का है, तो इतना बड़ा नहीं है। फिर ऊपर ऊपर के स्वर्गलोक में लंबा आयुष होते हैं। माने आया लेकिन इसमें आया कलश समय सार में आया वो बात। हाँ है, नहीं इसमें नहीं आया, इनके वचनों में नहीं आया, समय सार में आया है। अच्छा, छह महीने तो लंबा काल है भैया। क्या छह महीना तो बहुत मंद पुरुषार्थ हुए इसके लिए छह महीना लगता है। क्या थोड़ा मंद पुरुषार्थ हो गए तो महीना दो महीना तीन महीना लग जाता है, लेकिन अति मंद पुरुषार्थ हो गए तो छह महीना लगता है, बाकी तो कुछ दिनों में ही अनुभव आ जाता है। हाँ हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखो सुगानी जी को क्या हुआ। हाँ, एक ही दिन में घंटों ही लगाए उनको, तो इनको तो ज्यादा दिन भी नहीं लगा, कुछ घंटों में उनको उन्होंने अनुभव ले लिया। तो बहुत तेजी से काम करते थे। पात्रता होनी चाहिए, और पात्रता लाने में या आने में कोई देर नहीं है, उसमें न दान देना पड़ता है, न उपवास करना पड़ता है, न पूजा करनी पड़ती है, न भक्ति करनी पड़ती है, न शास्त्र पढ़ना पड़ता है, की जरूरत पड़ती है, ऐसी कोई शर्त इनके पास नहीं है, पात्रता में कोई शर्त नहीं है। एक न्याये मति અને શ્રુતનો વિષય કેવળ જ્ઞાન જેવડો છે, આવે છે તત્વાર સૂત્રમાં, તો સમાવેશ થઈ ગયો કે નહીં? જેવડો નો અર્થ શું થાય? મતિ શ્રુત જ્ઞાન ની વ્યાખ્યા ઉમા સ્વામી એમ કરી કે સર્વ દ્રવ્ય પર્યાયેષુ क्या सूत्र कौन सा है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु मति श्रुत ज्ञान निवाद प्रकरण चालू से क्या? तो मति श्रुत ज्ञान मां अभेदपणे छय द्रव्य ने एनी त्रणे कालनी पर्याय आवी जाय छे, અને ન આવતી હોય તો સર્વજ્ઞ નો સ્વીકાર મતી શ્રુત જ્ઞાન માં ન થાય. સર્વજ્ઞ નો સ્વીકાર કોને કર્યો? મતી શ્રુત જ્ઞાને કર્યો. તો મતી શ્રુત જ્ઞાન વિષયી અને એનો વિષય સર્વજ્ઞતા થઈ, થયું કે નહીં થયું? તો એનો કોઈ ભેદ એનામાં પ્રગટ થઈ જાય તો એમાં શું મોટી નવીન વાત છે? એ અભેદ પણ આવે છે. સર્વજ્ઞતા બધા ભેદ ને જાણે, અને મતિશ્રુત અભેદપણે છય દ્રવ્યની ત્રણે કાળની પર્યાય ને જાણે બરાબર, અને સર્વજ્ઞ સ્વભાવને પણ જાણે, ને સર્વજ્ઞપણાને પણ કેવળ જ્ઞાનને પણ જાણે. મતિશ્રુત જાણે છે ને, પણ અભેદપણે જાણે, બધા ભેદ ન આવે. પણ કોઈ ભેદ આવી જાય તો એમાં નવું શું છે? આવી ગયો ને, એટલે તો આવી ગયો, એટલે તો એ ભેદ આવી ગયો કે એક ભાવ પછી મારું નિર્માણ પદ થશે. સ્વરૂપ સ્વદેશમાં જાસું મેં, એ ક્યાંથી આવ્યું? એ અભેદ માંથી ભેદ આવ્યો. દેખીએ ગુરુદેવ કે એક વચનામૃત હૈ પરમાગમ સાર મેં, કે જૈસા 14 પૂર્વધારી 11 અંગ ઓર 12 અંગ કા 14 પૂર્વ, 14 પૂર્વધારી જૈસા ગણધર દેવ ન્યાય નિકાલે એસા ન્યાય સમ્યક દ્રષ્ટિ ચતુર્થ ગુણ સ્થાન વાલા નિકાલ સકતા હૈ. ઇસકા મતલબ ક્યા હુઆ? કે અભેદ જ્ઞાન મેં સભી ભેદ ગર્ભિત હૈ. શાસ્ત્ર પઢે તો ઉનકો વો ન્યાય સમજ મેં આવે, એસી બાત ઉનકો નહીં હૈ. ક્યો? કે અનંત ન્યાય કા ધણી, અનંત નય કા ધણી, ન્યાયાધીશ જિસકો કહેતે હૈ, ધણી કો ક્યા કહે? ન્યાયાધીશ ઉસકે કબજે મેં હૈ, ઇસકે દ્રષ્ટિ કે કબજે મેં હૈ. ઇસલિયે કોઈ ભી ન્યાય નિકલ સકતા હૈ, જો 14 પૂર્વધારી નિકાલે વો સમ્યક દ્રષ્ટિ નિકાલ સકતા હૈ, એસા વચનામૃત હૈ. તો યહી કારણ હૈ કે એસા મતિ શ્રુત કી અભેદતા મેં સભી ભેદ ગર્ભિત હૈ. કભી કોઈ ભેદ વ્યક્ત હો જાતા હૈ તો હો જાતા હૈ, ઉસમે કોઈ આપત્તિ નહીં હૈ. એ તો એમને જાતિ, એ તો જાતિ સ્મરણ માંથી વાત નીકળી છે, એ વાત જાતિ સ્મરણ માંથી નીકળી છે, એ મતી સ્મૃતિ માંથી આવી છે. આપણે એ એમને સાંભળ્યું હતું સિમંદર ભગવાન પાસે ભૂતકાળમાં ગયા ભાવમાં સાંભળેલું, એ યાદ આવ્યું છે. પણ એમને પણ મતી શ્રુતની નિર્મળતા હતી, પણ એ નિર્મળતામાં નથી ભાષું, પણ જાતિ સ્મરણમાં ભાષું છે. જ્યારે શ્રીમદજીને પૂર્વભાવ સાથે સંબંધ નથી, આગામી ભાવની વાત કરી છે, તો જાતિ સ્મરણ પૂર્વભાવનું જાણે, આ આગામી ભાવનું ક્યાંથી જાણ્યું? તો કે શ્રુત જ્ઞાનની નિર્મળતાથી જાણ્યું. એમ વાત દેખો દૂસરા એ સબૂત હૈ કે સુગાનીજી કે બારે મેં ગુરુદેવ ને એસા કહા કે હમકો ચાર ભાવ લગેગા, કેવલ જ્ઞાન હોને મેં હમકો ચાર ભાવ હૈ, હમારે જીતને ભાવ બાકી હૈ, લેકિન ઇનકા પુરુષાર્થ દેખતે હૈં, કિનકા? સુગાનીજી કા. તો એસા લગતા હૈ કે વો અભી દેવલોક મેં ગયે હૈ, સમ્યક દર્શન લેકર કે વૈમાનિક દેવ મેં ગયે હૈ, વહાં સે નિકલ કરકે ચારિત્ર કે અંગો અંગીકાર કરકે વો નિર્વાણ પદ કો પ્રાપ્ત હો જાયેંગે, ઉનકો એક હી ભાવ હૈ. તો હમ ચાર ભાવ કે બાદ જબ હમ મુનિપદ ચારિત્ર અંગીકાર કરેંગે, ઉસ વક્ત તીર્થંકર હૈ વો પહેલા વચન ઉચ્ચાર ક્યા કરતા હૈ? દીક્ષા કે કાલ મેં નમો સિદ્ધેભ્યઃ. તો અર્યંતો કો નમસ્કાર નહીં કરતે, ખુદ હી જગદગુરુ હૈ ને, ઇસલિયે તો નમઃ સિદ્ધેભ્ય બોલતે હૈ. તો હમારા ભી એસા વચન ઉચ્ચાર હોગા, ક્યા બોલે? ચોથે ભાવ મેં હમારા વચન ઉચ્ચાર હોગા નમઃ સિદ્ધેભ્ય, તો ઉસ વખતે યે સોગાનીજી કા આત્મા સિદ્ધ લોક મેં હોગા, हमारा नमस्कार उनको भी पहुंचेगा। अभी उनको एक ही भव है, गुरुदेव ने कहां से जाना, ये सवाल है हमारा। ये ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की निर्मलता से जाना, इसमें शुद्ध ज्ञान की निर्मलता है। अपना भव भी दिख सकता है, दूसरों का भी दिख सकता है। क्यों? कि वो तो सर्वज्ञता का स्वीकार कर लिया उस ज्ञान ने। सर्व द्रव्य पर्यायेषु, यही सिद्धांत में लागू होता है। जितना केवल ज्ञान जानता है उतना ही श्रुत ज्ञान जानता है, वो प्रत्यक्ष जानता है, ये परोक्ष जानता है, वो सब भेद पूर्वक जानता है, ये कुछ भेद पूर्वक जानता है, बस इससे ज्यादा अंतर कोई नहीं है। विषय तो उतना का उतना है। ज्ञान में चमत्कार है। ज्ञान तो बहुत चमत्कारिक तत्व है। जो अपने आंख में चणानी दाल जेटली जगह ये लेंस छे, अने त्यांथी जोवानो बने छे बहारना पदार्थों ने। हवे तमे एक पर्वत ऊपर थी जुओ तो 25 माइल दूर एक गाम होय तमने आखू दिखाय छे। અથવા તમે દાર્જિલિંગ ના એક મકાન માંથી જુઓ તો કંચનજંઘા ના શિખરો દેખાય છે, દેખાય છે કે નહીં? હવે તો સેંકડો માઇલ જેટલો મોટો પહાડ છે કે જેમાં સેંકડો માઇલ નો સમાવેશ થાય। જ્ઞાન માં તો દાળિયાની દાળ જેટલી જગ્યા છે અહીંયા। આટલા ક્ષેત્રમાં એનું માપ કાઢીએ છીએ, કોનું માપ કાઢીએ છીએ? પર્વત નું માપ કાઢી લઈએ છીએ કે આટલા માઇલ દૂર છે, આટલો ઊંચો છે, ક્યાંથી કાઢીએ છીએ? જ્ઞાનનો ચમત્કાર છે આ, તો મેલા જ્ઞાનનો ચમત્કાર છે। નિર્મળ જ્ઞાનનો ચમત્કાર એથી વધારે હોય એમાં શું નવું છે? આ તો રાગ દ્વેષની સાથે એકત્ર થયેલા જ્ઞાનમાં પણ આટલો ચમત્કાર છે। તો પછી જે જ્ઞાન નિર્મળ શુદ્ધ થાય એમાં ચમત્કાર કેટલો હોય, અંદાજ ન નીકળી શકે એવી વાત છે। એટલે એ બધી વાત શક્ય છે, કોઈ વાત અશક્ય નથી, કહી શકાય।